थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नहेमाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी फिर से एक बार परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने और उसमें से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रियो, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके अपने उन नए मित्रों का जो हमारे इस कार्यक्रम में पहली बार भाग ले रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों नहमिया की पुस्तक, जो पुराने नियम की पुस्तक है, उसमें से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम यह देख रहे थे कि किस प्रकार से परमेश्वर के दास नहमिया ने शहरपनाह को बनाने का कार्य आरंभ किया। उसने अलग अलग फाटक बनवाए और हमने देखा कि अनेकों ने इस कार्य में सहायता प्रदान की। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके माध्यम से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें सिखाते और समझाते हैं। आज जब हम फिर से आपके वचन का मनन चिंतन करना चाहते हैं, विचार विमर्श करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, हमें एकाग्रता पन दीजिए, ताकि प्रभु जब हम आपके वचन को सुनते हैं, हम अपने जीवन में उसे सीख करके ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार से चलने पाएं। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन में निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, किसी न किसी रूप से अपने जीवन में परेशान है, आप उन सब की सहायता कीजिए। इसके साथ हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, जहां कहीं भी हैं आप उनके साथ हो, उन्हें स्पर्श करें, उनसे बोले बातचीत करें, ताकि आज का वचन उनके जीवन के लिए भी आशीष का कारण ठहरे। इस समय हम में से प्रत्येक को आपके हाथ में सौंप देते हैं। इस वचन के अध्ययन पर आशीष मांगते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम नहमिया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि शहरपनाह के 7 फाटक बन चुके हैं, जिसे हमने देखा है, और आज हम 8वें द्वार के बारे में देखेंगे जो घोड़ा फाटक है। तो आप मेरे साथ निकालिए नहमिया की पुस्तक 3 अध्याय उसका 28 पद। नहमिया की पुस्तक 3 अध्याय उसका 28 पद। फिर घोड़ा फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। घोड़ा एक योद्धा की सवारी था। जकर्या 1 अध्याय उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, लाल घोड़े के सवार की चर्चा इसमें की गई है। उसके पीछे लाल, भूरे और श्वेत घोड़े भी खड़े थे। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 6 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। ये सब घोड़े शक्ति के प्रतीक हैं। प्रभु यीशु गधे पर सवार होकर यरूशलेम में आए थे। वह गधे पर सवार होने के कारण दीन न समझे गए या न समझे जाएं। गधा तो राजाओं की सवारी था। उस युग में गधा एक छोटा आभा का पशु नहीं माना जाता था। घोड़े की सवारी केवल युद्ध में की जाती थी, अतः घोड़ा युद्ध का प्रतीक था। मेरे मित्रों, घोड़ा फाटक आज विश्वासियों की सैनिक सेवा का प्रतीक है। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 6 पद में पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। यह सत्य पत्र के सबसे पहले भाग में है और दूसरे भाग में 4 उसके 1 पद में लिखा है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जी हाँ, हमारा सिर तो स्वर्ग में है, परंतु हमारे पांव इस धरती पर हैं, जहां हमें चलना है। यही नहीं, इफिसियों के पत्र 6 अध्याय के 11 पद में हमें कहा गया है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यह वास्तविक युद्ध है जो आत्मिक युद्ध है और हमें लड़ना है। इफिसियों के पत्र 6 अध्याय के 12 पद में पौलुस आगे कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अर्थात हम मांस और लहू से युद्ध नहीं करते, आत्मिक शक्तियों से युद्ध कर रहे हैं। आज परमेश्वर के वचन में लोगों की रुचि बढ़ रही है तो बैरी भी बढ़ रहे हैं। पौलुस अपने युग में भी यही कहता था, जिसे हम पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं, मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। जी हाँ, मुझे परमेश्वर के वचन की प्रसारण सेवा तक नहीं पता था कि मेरे कुछ बैरी हैं। यह बड़ी विचित्र बात है कि आपका विरोध वे लोग करेंगे जिन्हें परमेश्वर के वचन को सहयोग प्रदान करना है। ये लोग स्वयं को विश्वासी कहते हैं और आप सोचेंगे कि यदि वे अच्छा ना बोले तो बुरा भी तो ना बोले, परंतु वे मेरी बाइबल शिक्षाओं के आलोचक हैं, क्योंकि वैरी अनेक हैं। हमें परमेश्वर के सब अस्त्र शस्त्र धारण करना आवश्यक है। हमें यह भी कहा गया है कि हम आत्मा की तलवार उठा लें, जो परमेश्वर का वचन है। हमें केवल यही एक अस्त्र धारण करना है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय के 3 पद में पौलुस युवा प्रचारक तीमुथियुस से कहता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। इस पद से स्पष्ट है कि हम विश्वासियों को युद्ध करना होगा। यदि आज आप युद्ध नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप प्रभु के लिए खड़े नहीं हैं, क्योंकि अनेक स्थानों में युद्ध सरगर्म है। यदि आप प्रभु के लिए खड़े होते हैं तो निश्चय ही कोई न कोई आपको निशाना बनाएगा या गिराना चाहेगा। आज अनेक परमेश्वर की संतान युद्ध में संघर्षरत हैं। मित्रों, आइए हम देखेंगे आगे पूर्वी फाटक। नहमिया की पुस्तक 3 अध्याय के 29 पद में लिखा है, इनके बाद इमेर के पुत्र सादोक ने अपने घर के सामने मरम्मत की और तब पूर्वी फाटक के रखवाले शकन्याह के पुत्र समयाह ने मरम्मत की। अगला द्वार है पूर्वी फाटक, जो हमें उत्साहित करेगा और आशा बंधाएगा। स्पष्ट है कि यह द्वार नगर के पूर्व में था। यह प्रातः काल सबसे पहले खुलने वाला फाटक था। आज के यरूशलेम में यह द्वार मुहर बंद है। कुछ लोगों का यह मानना है कि यीशु जब फिर से आएगा तब वह इस द्वार से प्रवेश करेगा। हो सकता है, परंतु धर्मशास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है। धर्मशास्त्र में तो यह लिखा है कि वह स्वर्ण द्वार से प्रवेश करेगा। यह द्वार शहर पनाह में नहीं, मंदिर में है। यद्यपि यह द्वार आज बंद है, उस युग में यह सबसे पहले खुलता था, क्योंकि वह सूर्य को देखता था। वहां एक संतरी होता था जो चौकसी करता था। ज्यों ही दिन तड़कता था वह इसे खोल देता था। संभवतः वहां के निवासी भी वैरी के भय से सो नहीं पाते थे और वे भी रात में शहर पनाह पर चहलकदमी करते थे। अंत में वे संतरी से पूछते, संतरी कितनी रात हुई है, क्या यह समाप्त नहीं होगी? और संतरी उत्तर देता, अभी अंधेरा ही है, परंतु दिन तड़कने वाला है। तब पूर्वी क्षितिज से कुछ प्रकाश दिखाई देता और संतरी कहता, उज्याला होने वाला है और वैरी नहीं है। सूर्य उगने पर नगर में कैसी राहत दिखाई देती होगी। प्रियो, हम विश्वासियों को पूर्वी फाटक पर एकत्र होना है, क्योंकि क्षितिज में ज्योति की किरण है। शीघ्र ही सूर्योदय होगा, परंतु सूर्योदय से पूर्व सुबह का प्रकाशमान सितारा दिखाई देगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 16 और 17 पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। इसे हम बादलों में उठाया जाना कहते हैं। यदि कोई कहे कि बाइबल उठाए जाने के विषय कुछ नहीं कहती तो वे शब्दार्थ विज्ञान की बात करते हैं। धर्मशास्त्र कहता है कि वह अपनों को सूर्योदय से पूर्व उठा लेगा। जी हाँ, आज ज्योति की एक किरण दिखाई दे रही है। मैं उठाए जाने का समय नहीं बता सकता, परंतु कुछ लोगों ने 2000 तक का समय निर्धारित किया था। मैं जानना चाहूंगा कि उनमें यह विचार कहां से आया। वे सोचते हैं कि उनके पास स्वर्ग का सीधा संपर्क है जो अन्य लोगों के पास नहीं है। निसंदेह धर्मशास्त्र कहता है कि प्रभु आने वाला है और मेरे विचार में अगली घटना हमारे स्वर्ग में उठाए जाने की है। कलीसिया उठा ली जाएगी। मेरे मित्रों, हमें पूर्वी द्वार पर एकत्र होना है। यह अंधकार का समय है। ज्योति की एक छोटी किरण हमें शांति देती है और हम में आशा जाग उठती है। नहमिया 3:30 में लिखा है, इसके बाद शेलेमियाह के पुत्र हनन्याह और सालाब के 6वें पुत्र हानून ने एक और भाग की मरम्मत की। तब बेरेक्याह के पुत्र मशुल्लाम ने अपनी कोठरी के सामने मरम्मत की। यह पद रुचिकर है क्योंकि मशुल्लाम ने केवल अपनी कोठरी के ऊपर ही मरम्मत की थी। मेरे मित्रों, आप संसार या अपने पड़ोस तक ना पहुंच पाए, परंतु आप अपने परिवार में तो पहुंच ही सकते हैं। आप अपने परिवार ही में परमेश्वर का वचन सुना सकते हैं। एक उद्धार प्राप्त परिवार होना अति उत्तम बात है और यह आपका उत्तरदायित्व भी है कि आप अपने परिवार के सदस्यों तक वचन पहुंचाएं। मुझे एक मनुष्य ने अपने परिवार के बारे में कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं उन्हें उद्धार दिलवाऊं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। उसका काम था कि उन्हें सुसमाचार सुनाए और उनका निर्णय उनके और प्रभु के मध्य था। मशुल्लाम ने केवल अपनी कोठरी के ऊपर का भाग सुधारा था। स्पष्ट है कि परमेश्वर उससे यही चाहता था और उसने उसका नाम लिख लिया। अब हम आगे देखते हैं, हम्मी फगत फाटक। नहमिया 3:31 में लिखा है, उसके बाद मलकियाह ने, जो सुनार था, नतीनों और व्यापारियों के स्थान तक ठहराए हुए स्थान के फाटक के सामने और कोने के कोठे तक मरम्मत की। हम्मी फकत फाटक क्या है? हम्मी फकत का अर्थ है पुनरालोकन या पंजीकरण। यरूशलेम में प्रवेश करने वाले परदेशी को इस द्वार पर अपना पंजीकरण करवाना पड़ता था। वह द्वार पुनरालोकन का द्वार भी था। सेना युद्ध करके लौटती थी तब इस द्वार से प्रवेश करती थी। दाऊद इसी द्वार पर अपनी सेना का स्वागत करता था जब वे युद्ध से लौटती थी। वह उनसे बहुत प्रेम रखता था और वे भी दाऊद से बहुत प्रेम करते थे। वे सहस दाऊद के लिए जान की बाजी भी लगा चुके थे। जब वे इस मेहराब के नीचे से प्रवेश करते थे तब दाऊद युद्ध में घायल अपने सैनिकों को उनकी निस्वार्थ निष्ठा और साहसी स्वार्थ रहित सेवा के लिए धन्यवाद कहता था। जैसा हमने पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 में देखा है कि दुनिया से उठाए जाने के समय हम प्रभु से भेंट करने के लिए हवा में उठा लिए जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है, ओह, यह तो बड़ा अद्भुत अनुभव होगा। जी हाँ, अवश्य होगा। परंतु क्या आप जानते हैं कि उठाए जाने के बाद हम मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे? दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5:10 में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। जी हाँ, यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20:11-15 में व्यक्त है। श्वेत सिंहासन का न्याय नहीं है। मसीह के न्याय आसन के सामने केवल विश्वासी उपस्थित होंगे, क्योंकि इस न्याय में उद्धार नहीं प्रतिफल प्राप्त होगा। विश्वासी अपने दैहिक कार्यों का प्रतिफल पाएंगे, बुरा या भला। अविश्वासी वहां नहीं होंगे। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5:11 में पौलुस कहता है, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। दूसरे शब्दों में पौलुस कहता है, मैं व्यस्त रहना चाहता हूं क्योंकि मुझे अपने काम का ब्यौरा देना होगा कि मैं दिन में 8 घंटे या 60 मिनट प्रति घंटा 24 घंटे प्रतिदिन 7 दिन प्रति सप्ताह काम कर रहा हूं। व्यवस्था के अधीन यहूदी परमेश्वर को केवल एक ही दिन देते थे, परंतु हमारा प्रभु कहता है कि हम कुछ भी करें, हमें उसके निमित्त वह काम करना है। हम चाहे बर्तन धोएं या गड्ढा खोदें, वह इसकी चिंता नहीं करता। किसी ने कहा, आप एक गड्ढा भी इतना सीधा खोद सकते हैं कि परमेश्वर भी उसका निरीक्षण कर पाए। एक दिन वह अवश्य निरीक्षण करेगा। वह आपके सांसारिक जीवन का निकट निरीक्षण करेगा। हम्मी फगत फाटक इसका प्रतीक है। दाऊद युद्ध में घायल सैनिकों को जानता था। वह उनके बलिदान को समझता था। यदा कदा वह किसी एक सिपाही को बुलाता और कहता, तुम्हारे लिए यह पुरस्कार है। मसीह के न्याय आसन के समक्ष अनेक अनजान विश्वासी होंगे जिन्हें प्रतिफल मिलेगा। हम प्रचारकों, परमेश्वर के दासों, सेवकों, कलीसिया के पदाधिकारियों, संडे स्कूल के शिक्षकों के लिए भी प्रतिफल की आशा है। परंतु मेरे विचार में प्रतिफल उन अज्ञात मनुष्यों को मिलेगा जो यहाँ परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। आपके और मेरे लिए एकत्र होने हेतु हमें फकत फाटक एक अद्भुत स्थान है। उसकी आशा हमें अपने जीवन के निकट निरीक्षण के लिए बाध्य करे। हम नहमिया 3:32 में पढ़ते हैं, और कोने वाले कोठे से लेकर भेड़ फाटक तक सुनारों और व्यापारियों ने मरम्मत की। हम 10 फाटकों का निरीक्षण करके अब फिर से भेड़ फाटक पर आ गए हैं। हमने यरूशलेम के शहरपनाह का चक्कर काट लिया है और लौटकर भेड़ फाटक पर हैं। हमें स्मरण होगा कि भेड़ फाटक मसीह की क्रूस का प्रतीक है। हमने मसीह के क्रूस से आरंभ किया और अब हम मसीह के क्रूस पर ही अंत कर रहे हैं। मसीह का क्रूस ही है जो सर्वाधिक महत्व का है। मित्रों, भेड़ फाटक पर खड़े होकर मैं आपको एक महान प्रचारक के रूप में कहानी सुनाना चाहता हूँ। आराधना के पश्चात एक युवक ने उनके पास आकर कहा, भाई मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने कहा, कहें, मुझे घर लौटने के लिए ट्रेन पकड़ना है, अतः हम मार्ग में बातें कर सकते हैं। मार्ग में चलते चलते उस युवक ने कहा, आपने मसीह में विश्वास करने की बात की थी, मेरी समझ में नहीं आई। तब उन्होंने उद्धार की योजना उसको दोहराई, परंतु उस युवक ने कहा, मुझे खेद है कि मैं उद्धार को नहीं समझ पा रहा हूँ। प्रचारक ने ट्रेन के आने की आवाज सुनी तो उस युवक से पूछा, क्या उसके पास बाइबल है? उसने कहा, जी नहीं। तब प्रचारक ने कहा, मेरी यह बाइबल ले लो और यशाया 53:6 को पढ़ना। जब आप पहले सब पर आएंगे तब आप झुककर उसमें प्रवेश करेंगे, और जब आप अंतिम सब यानी शब्द सब पर आएंगे या पहुंचेंगे तो सीधे खड़े हो जाना, तो आप सीधे बाहर आ जाएंगे। उस युवक ने उनकी बाइबल ले ली और ट्रेन में सवार हो गए। वह युवक बाइबल पकड़े हुए विमूढ़ हो खड़ा रह गया। वहां उसने एक बत्ती के नीचे बाइबल खोलकर यशाया 53:6 को निकाला और सोचने लगा, उन्होंने क्या कहा था, पहले सब पर झुकना? हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया। उस युवक ने सोचा, निश्चय ही यह मेरा चित्रण है। उसने आगे पढ़ा, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सोचता ही रह गया कि उसे ध्यान आया, ओह, मुझे सीधे खड़े होकर बाहर आना है। मैं अब देख सकता हूँ, मुझे मसीह में विश्वास करना है। परमेश्वर ने मेरे सब अधर्म उस पर लाद दिए हैं, अब मैं सीधा खड़ा हो सकता हूँ। परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है। अगली सुबह प्रचारक के समय से पूर्व आकर वह बैठ गए और उस युवक को खोजने लगे। आराधना आरंभ हो गई, परंतु वह युवक दिखाई नहीं दिया। उसके पास उनकी बाइबल थी, और स्कॉटलैंड का होने के कारण वह अपनी बाइबल से हाथ धोना नहीं चाहते थे। अंत में वह युवक आया और प्रचारक अपनी बाइबल लेने उसके पास गए। उन्होंने पूछा, युवक, क्या तुमने मेरा कहा किया? उसने उत्तर दिया, जी हाँ, मैंने किया। मैंने यशाया 53:6 को पढ़ा है। मैं पहले सब पर झुका और अंतिम सब पर सीधा खड़ा हो गया। तब प्रचारक ने पूछा, तब क्या हुआ? उस युवक ने उत्तर दिया, अब मैं जान गया हूँ कि यीशु मेरा उद्धार करता है। मैंने उसमें विश्वास किया है। मेरे मित्रों, हम भेड़ फाटक से आरंभ करते हैं और भेड़ फाटक से बाहर आते हैं। मेरे विचार में हम अनंत समय भेड़ फाटक की चर्चा कर सकते हैं, जहां 2000 वर्ष पूर्व यीशु हमारे पापों के लिए मर गया था। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा है? आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो निष्पाप है। वचन हमें बताता है कि हर एक ने पाप किया है, प्रत्येक ने पाप किया है, और कोई भी धर्मी नहीं है। चोरी, हत्या, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, लुचपन, दुष्टता, नीचता, ईर्ष्या, झगड़ा, ये सारी बातें जो हमें पाप की ओर ले जाती है। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पापों की सजा पाएं। तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? शायद नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने हम मनुष्यों से प्रेम किया और अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस जगत में भेजा, और उसने हम सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे बदले में मर गया, ताकि हम उस भयानक मृत्यु से, उस दर्द से, उस बीमारी से बच जाएं और अनंत जीवन को प्राप्त करें। बस मुझे और आपको यह कहना है, प्रभु यीशु, मैंने पाप किया है, मेरे कारण आपको क्रूस पर चढ़ना पड़ा, आप मेरे बदले में मर गए, आप मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पापों से मुझे छुटकारा दीजिए, मैं ये जीवन नहीं जीना चाहता हूँ, मैं एक शांतिप्रिय जीवन जीना चाहता हूँ, आप मेरे जीवन का संचालन करें। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप यीशु पर विश्वास करें? आप कोई भी क्यों ना हो, वह सब मनुष्यों से प्रेम करते हैं, वह आपसे प्रेम करते हैं, आपको भी शांति और आनंद देना चाहते हैं। मेरे मित्र, आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, आपके प्रिय पुत्र यीशु के लिए, जो हमारे पापों के बदले में क्रूस पर मर गया, मृतकों में गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज वह स्वर्ग राज में विराजमान है और आज हमारे पापों से हमें क्षमा देने में, हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारे जितने भी श्रोता भाई बहन इस समय प्रार्थना कर रहे हैं अपने जीवन के पापों के क्षमा के लिए, आप उनके जीवन में कार्य करें, उन्हें क्षमा करें, उनके जीवन में प्रवेश करें और अपनी शांति और आनंद उन्हें प्रदान करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
सुख और दुख में रहता प्रभु, जग में मसीहा कोई नहीं
है सहारा।